Okay. चले बेटा, अब आप लोग थोड़ा सा इधर चुप हो जाए तो बोल। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال الله تعالى في مقام آخر: وقل لهم وعد الله الحسنى. और उन सब के साथ अलहुसना का वादा है। अल्लाह ताला ने अलहुसना का वादा किया हुआ है। अलहुसना किसको कहते हैं? जन्नत को। ठीक है, तो सारे के सारे सहाबे कराम के साथ अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया हुआ है भाई। और हमें पता ही नहीं कि जन्नत का वादा सहाबे कराम के साथ किया हुआ है, बातें कर रहे हैं। तो हम इन सहाबे कराम में से किन सहाबा का तذکرہ आजकल पढ़ रहे हैं कि जिनका नबी अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर के, एक एक नाम ले ले करके कहा कि हुआ फिल जन्ना, हुआ फिल जन्ना, हुआ फिल जन्ना। ठीक है, उनमें से हम आखिरी वाले जो हैं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तो कोई सवाल ही नहीं पूछा, किस चीज का जवाब दे, सवाल का जवाब होता है। ठीक है, तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमने आखिरी वाकया जो पढ़ा था वो आप बताना चाह रहे थे क्या? नहीं, कुछ और बताना चाह रहे थे। आखिरी बार से हमने इनका क्या पढ़ा था? जी सर,
अच्छा अच्छा
एक दिन आएगा जब आपके पास सिर्फ 3 चीजें होंगी। नहीं, ये नहीं कहा था कि 3 चीजें होंगी, लेकिन ये जरूर कहा था कि एक दिन आएगा जब बहुत मुसलमानों के लिए माल दौलत तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 3 चीजें काफी हो जाएंगी, आपके लिए 3 चीजें सफिशियंट होंगी। ठीक है, तो वो वाला वाक्य हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, और उसके बाद हमने एक दूसरा वाक्य भी पढ़ा था कि उमर रज़ान इनके घर गए जब ये शाम में थे, शाम के वक्त में नहीं थे, शाम की जगह पर थे, शाम के मुल्क में थे। तो वहां पे जाकर के ना उन्होंने इनके मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। तो घर में गए तो देखा कि वहां पर वाकई सिर्फ 3 चीजें ही थी, वाकई सिर्फ 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें थी? एक तो उनका वो कुजावा था जो कि ऊंट के ऊपर या घोड़े के ऊपर रखने वाली सीट होती है, उसको कुजावा कहते हैं। और क्या चीजें थी? ये बीच में जो ये कह रहे थे उन्होंने पहले आता, एक तलवार थी और आर्मर था। ठीक है, वो जरा थी जो कि आर्मर के तौर पर पहनते हैं, और कुछ भी नहीं था उनके घर के अंदर। तो उमर रज़ा ने फरमाया कि कुछ तो रख लेते, कुछ तो और चीजें रख लेते अपने साथ। ऐसे वाकई इसी तरीके से फरमाया ना, तो उन्होंने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, हमें कब्र तक पहुंचाने के लिए ना बस ये चीजें काफी हैं। तो फिर उसके बाद हमने एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था, समझाने की कोशिश करी थी, मुझे क्या आप ही क्या होगा समझ। क्या कॉन्सेप्ट समझाया था? कॉन्सेप्ट यानी उसूल या सोच। जी साहब,
इस्लाम
इस्लाम को नहीं, ये तो बिल्कुल क्लास के शुरू में समझाया था, नहीं आखिर में कौन सा वाला कॉन्सेप्ट समझाया?
ऐसा तो बहुत आएगा, लेकिन वो समय उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी जरूरत
अच्छा
है।
ठीक है, ये नसीहत हो गई कि हमें इतना करना चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। आप कुछ कह रहे थे दाऊद में? कुछ आप कुछ कह रहे? हाँ, क्या समझाया था जी फरहान भाई?
क्या है और फिर
फजूल खर्ची किस चीज को कहते हैं? आपको यह समझाया था कि फजूल खर्ची किस चीज को कहते हैं। ठीक है, हाउ मच खर्ची इज फजूल खर्ची, ये जुमला याद है? हाउ मच खर्ची, हाउ मच स्पेंडिंग इज फजूल खर्ची। तो भाई हाउ डू यू डिटरमिन कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं कि आप खर्ची कर रहे हैं? खर्ची का मतलब होता है खर्च करना। भाई हम दुकान जाएंगे दूध खरीदने के लिए तो वो फ्री में, तो अपने जही भाई क्या कह रहे थे, नथिंग इज फॉर फ्री, है ना? तो दूध आपको मुफ्त में तो नहीं वो दूध वाला दे देगा ना, दुकान वाला। तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको दूध मिलेगा, ब्रेड मिलेगी, रोटी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो आप खर्च कर रहे हैं, क्या ये फजूल खर्ची है कि ये नहीं है फजूल खर्ची? हाउ यू डू डू हाउ डू यू डिसाइड दैट? ठीक है जी,
अगर आपकी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट, अंग्रेजी में जरूरत को रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो फिर ये फजूल खर्ची नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप जो है वो यहां से कुवैतिस्तान जाना चाहते हैं, ठीक है, यहां से आप कुवैतिस्तान जाना चाहते हैं, तो अब उसके लिए आप एक घोड़े पे बैठे कुवैतिस्तान पहुंच जाएंगे, ठीक है। घोड़े पे बैठे तो आप कुवैतिस्तान घोड़े को कटकट कुवैतिस्तान पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जरूरत जो है वो एक घोड़ा है बस, क्या ख्याल है? क्या आपकी जरूरत जो है वो घोड़ा है या नहीं? जी अब्दुल्ला, जोर से बोले, आप यहां बैठे हुए तो ज्यादा अच्छा लगा, आवाज आ रही थी आपको।
अच्छा
अच्छा नहीं, कोई चीज कान पहुंचने के लिए आपको खाने पीने की चीजें तो नहीं चाहिए ना, उन पे तो नहीं आप बैठ के कोई चीज कान जाएंगे, आप तो घोड़े पे बैठ के कोई चीज कान जाएंगे ना। जी, अच्छा तो जाने की भी जरूरत है, सही बात है। खाली घोड़े से काम नहीं चलेगा, घोड़े पे बैठने के लिए आपको सीट भी रखनी पड़ेगी, फिर आप जगह पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसका जवाब जो है ना वो ज्यादा मुनासिब मुझे ये लगता है इसका जवाब, कि आज से अगर आप 200 साल पहले जिंदा होते ना, तो उस वक्त आपकी जरूरत घोड़ा होता, घोड़े पे बैठ करके आप कोई स्थान पहुंच जाते। लेकिन 200 ईयर्स अगो, ठीक है, आज जो है ना वो आप घोड़े को लेकर के अगर जाना शुरू कर देंगे ना, तो या तो किसी गाड़ी से उसको टक्कर लगेगी, या घोड़ा जो है वो गाड़ियों के शोर से परेशान होकर के बिदक जाएगा, उसको कह रहे हैं घोड़े का बिदकना, वो बिदक करके जब भागेगा ना, तो फिर वो एक कियोस पैदा हो जाएगा, ठीक है। या ये होगा कि पुलिस वाले अपने गाड़ी लेकर के आ जाएंगे, कहेंगे ये घोड़ा कहाँ से आ गया भाई, ये सड़क के ऊपर रियाज में घोड़ा चलाने की इजाजत ही नहीं है, घोड़ा अगर आपको चलाना है तो आप किसी हॉर्स राइडिंग क्लब में जाकर के घोड़ा चलाएं, ठीक है ना। रियाज की सड़कों के ऊपर घोड़ा चलाना अलाउड नहीं है, तो अब आप कोई भी स्थान जो है वो घोड़े के ऊपर नहीं पहुंच सकते, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड एंड इट्स नॉट सेफ, ठीक है, क्योंकि वो बिदक गया गाड़ियों की वजह से, तो आपको भी नुकसान होगा, दूसरों को भी नुकसान होगा, ठीक है। तो इस वजह से घोड़ा रखना ये हमारी जरूरत पूरी नहीं करता, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी यहां से वहां तक जाने के लिए, हमें किसी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, या हमें किसी बस की जरूरत पड़ेगी, या हमें किसी ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त 2026 के अंदर हमारी जरूरत जो है वो घोड़ा नहीं है ट्रैवलिंग के लिए, 200 साल पहले घोड़ा था, अब जरूरत घोड़ा नहीं है। अब तो भाई आज के जमाने के हिसाब से होगी ना, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग घरों में रहते थे, घर किसके बने हुए होते थे, किस चीज के बने हुए होते थे? मिट्टी के बने होते थे, मड हाउसेस होते थे, ठीक है ना, और दरवाजे दरवाजे जो होते थे ना वो लकड़ी के नहीं होते थे और वो मेटल के नहीं होते थे, ठीक है ना, दरवाजों के ऊपर बस एक पर्दा पड़ा हुआ होता था, ठीक है ना। तो अब कोई कहेगा भी नबी अलैहिस्सलाम तो मिट्टी के घर में रहते थे और वहां पर जो है वो घर के दरवाजे ही नहीं होता था, बल्कि खाली एक पर्दा पड़ा हुआ होता था, ठीक है, और दीवारें जो है वो खजूर के पत्तों की बनी हुई होती थी, तो बस हमारी जरूरत भी इतनी होनी चाहिए। तो मैं आज 2026 के अंदर भी मैं मिट्टी का घर बना करके रहूंगा, क्या ख्याल है आपका? है, अगर आप मिट्टी के घर बना करके रहेंगे तो फिर वही होगा कि रियाज म्यूनिसिपैलिटी वाले आपके घर आ जाएंगे कि भाई ये आपने किस किस्म की तमाशे किए हैं, या आप यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलती, ये हमारी मर्जी चलती है, हमारे शहर में आप मिट्टी का घर बना के इस तरह से नहीं रह सकते, ठीक है। तो मिट्टी का घर जो है ना ये हमारी जरूरत पूरी नहीं करेगा इस जमाने में, इस जमाने में हमें जो है वो इसी तरह के घर में ही रहना पड़ेगा जिस तरह के घर दूसरे लोगों ने बनाए हुए हैं। तो आपको हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंसान की जो जरूरत होती है ना, ये फिर हर वक्त हर लिहाज से हर जमाने के हिसाब से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यू हैव टू डिफाइन योर जरूरत, यू हैव टू डिफाइन योर जरूरत, तब तो हमें पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि जो चीज जरूरत के अलावा है ना वो फजूल खर्ची है, ठीक है। तो हर एक की जरूरत डिफरेंट होती है, ये बात हमने आपको पिछली क्लास में समझाने की कोशिश करी थी। इन्होंने क्या लिखा, जरूरत को पता करना होता है उससे ज्यादा फजूल खर्ची है। ठीक है, हाँ उससे ज्यादा फजूल खर्ची है। अच्छा आखिरी बात इसमें बहुत जरूरी वो ये है कि भाई आप फजूल खर्ची से क्यों बचना चाहते हैं, ये कौन बताएगा अल्लाह के अलावा? आप जब तक यहाँ नहीं आएंगे ना, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। आप इधर आ जाए तो फजूल खर्ची से हम क्यों बचते हैं? अल्लाह
अच्छा
ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि फजूल खर्ची ना करो। ठीक है, जो कुरान मजीद की आयात भी आपको सुनाई थी ना, इंदल मुबजरीन कानू इखवान शयातीन। ठीक है, और कहा क्या थी, एक और भी थी ना, कुलू वला तुसरिफू। ठीक है ना, और सूरह फुरकान की तलावत जो है वो इब्राहिम भाई परसों कर रहे थे, उसके अंदर भी है ना वो, तो बजर तबजीरा वला तो बजर तबजीरा,
सारी अच्छी
सूरह फुरकान के
बातें
आखिर में भी। हाँ
लगती
ये वही वाली आयत की बात है। हाँ तो अल्लाह ताला ने मना किया ना फजूल खर्ची से, तो हम फजूल खर्ची से क्यों बचते हैं? ये अल्लाह ताला ने मना किया है, तो अगर हम फजूल खर्ची करेंगे तो कौन नाराज हो जाएगा? मोहम्मद हादी भाई नाराज हो जाएंगे, इस वजह से फजूल खर्ची नहीं करनी है, या ये नाराज हो जाएंगे, इस वजह से तो हम फजूल खर्ची से नहीं बच रहे हैं ना, हम क्यों फजूल खर्ची से बच रहे हैं? अल्लाह नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो अपनी जरूरत डिफाइन करनी है ताकि हम फजूल खर्ची से बच सकें, तो ये जरूरत भी हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे कि हम अल्लाह ताला को बता सकें कयामत के दिन कि ए अल्लाह ये चीज जो थी ना, ये तो मेरी जरूरत थी, ये तो मेरी जरूरत थी। कयामत के दिन अल्लाह को बताना है ना, ठीक है ना, साथ भाई को तो नहीं बताना कयामत के दिन, या हजरत अंकल को तो नहीं बताना कयामत के दिन, या शायद अंकल को तो नहीं बताना कयामत के दिन, या हजरत सो कॉल्ड हजरत को तो नहीं बताना कयामत के दिन। हजरत ने पूछना है कयामत के दिन कि भाई तुमने फजूल खर्ची क्यों करी थी? किसने पूछना है? फजूल भाई अल्लाह ने पूछना है ना। ठीक है, तो हम तो अल्लाह की खातिर फजूल खर्ची से बचना चाहते हैं, तो इस वजह से जो जरूरत डिफाइन करनी होगी वो भी ऐसी डिफाइन करनी होगी जो कि हम अल्लाह को बता सकें कि अल्लाह ये जरूरत थी मेरी, किस वजह से मैंने ये वाली गाड़ी खरीदी हुई थी, किस वजह से मैंने ये वाला घर खरीदा हुआ था, किस वजह से मैंने ऐसे कपड़े खरीदे हुए थे, किस वजह से मैंने ऐसी खाने वाने खाए हुए थे, अल्लाह को बताना है ना भाई। ठीक है ना, आपस में किसी एक दूसरे को नहीं बताना। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट अल्लाह ना, यही तो आप लोगों को बार बार ये बात समझा रहे हैं ना कि भाई इट्स ऑल अबाउट अल्लाह, इट्स नॉट अबाउट पीपल। ठीक है, तो ये बात अगर कोई भूल जाए तो फिर वो बेचारा परेशान रहता है सारा वक्त, ओहो मैंने ये काम कर दिया, अब फलाने अंकल मुझे कहेंगे तुमने फजूल खर्ची कर दी है, तो मुझे उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं करी, मैंने तो जरूरत, भाई अंकल अंकल को डिफाइन नहीं करना, अंकल अंकल को सेटिस्फाई नहीं करना। ठीक है ना, ये अल्लाह का मामला है सारा का सारा। ठीक है, हम जो ना जब IBM में काम करते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी अमरीका की सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी, ठीक है ना, उसमें काम करते थे ना, तो हमारे मैनेजर साहब ने हमें ये कहा हुआ था कि हमें नहीं, सब सबको कहा हुआ था मुझे नहीं कहा हुआ था कि मैं टाइम लगा के जाया करता था, उसने मुझे कहा हुआ था, सबको कहा हुआ था कि आप जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसको, क्लेम क्लेम शीट भरा करें, इसको कहते हैं क्लेम शीट भरना, क्लेम करना। ठीक है, कि आप सुबह 8 बजे जो दफ्तर में आए हैं ना, और 6 बजे आप दफ्तर से निकल रहे हैं, तो आपने 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक क्या किया? ठीक है ना, तो उसमें बकायदा आवर्स लिखे होते थे, फ्रॉम 8 to 9 व्हाट डिड यू डू इन दिस आवर, फ्रॉम 9 to 10 क्या किया आपने, 9 to 10, 10 to 11 आपने क्या किया, 11 to 12 आपने क्या किया। हम समझते हैं ना हम बड़ी कंपनी में चले जाएंगे तो हमारे मजे हो जाएंगे, नहीं, टाइम क्लेम करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज लिखनी होती थी कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, और फिर वो क्लेम शीट जो थी वो सबमिट करानी होती थी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर, सबसे बल्कि अय्याशी वाली कंपनी के अंदर ये क्लेम शीट सबमिट करानी होती थी। तो अब ये जो क्लेम शीट आप सबमिट करा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है उस क्लेम शीट के अंदर? आप कहेंगे मैंने इतनी देर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करी थी, फिर इतनी देर जो है मैंने वेब के ऊपर जो है वो न्यूज वेबसाइट्स के ऊपर ब्राउजिंग करी थी, और इतनी देर जो है फिर मैंने अपने बेगम साहिबा के साथ खाने पीने के बारे में डिस्कशंस करी थी, तो वो आपका मैनेजर क्या कहेगा, तुम इसलिए आते हो, मैंने तुम्हें इसलिए नौकरी दी है, मैंने तुम्हें दुनिया तुम्हें तुम्हें आईबीएम कॉरपोरेशन के अंदर मैंने तुम्हें इसलिए जॉब दी थी कि तुम ये हरकतें करो मेरे दफ्तर में आकर के बैठ करके, और फिर उसके ऊपर मैं तुम्हें तनख्वाह दूं, क्या करूं मोहन भाई, फिर उसके ऊपर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूं, $80,000 या $100,000 पर ईयर की तनख्वाह भी मैं तुम्हें दूं, तुमने ये काम किया मेरे दफ्तर में आकर के, ठीक है ना। तो इस वजह से क्लेम शीट के ऊपर आप उल्टी सीधी चीजें नहीं क्लेम कर सकते, आपको वो चीज उसमें लिखनी होगी जो कि आप मैनेजर के सामने जस्टिफाई कर सके ना, ताकि मैनेजर जो है वो हाँ भी वाकई तुम्हें जो सैलरी दी जा रही है वो इट्स वर्थ इट, ठीक है ना, यू एक्चुअली डिजर्व योर सैलरी। तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जो भेजा है किस लिए भेजा है भाई, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमें दुनिया में किस लिए भेजा है, बंदगी करने के, मैंने तुम्हें और किसी काम के लिए पैदा ही नहीं किया सिवाय बंदगी करने के, ठीक है ना। तो अब हमें अल्लाह ताला को तो फिर जस्टिफाई करना है ना कि जी हमने बंदगी करी है कि हमने गंदगी करी है, ठीक है। वो बोड़ों की बात हो रही थी तो हमारे एक दोस्त थे वो पंजाबी दादा बोलते थे, तो कहते थे तुमने काम किया है कि लिद किया है, लिद करना कहते हैं घोड़ा के जब गंदगी करता है ना उसको कहते हैं लिद कर दी है, लीद भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहीं कयामत के दिन हमें ये ना कहें कि तुमने ये मेरी बंदगी करी है कि तुम गंदगी मचा करके आ रहे हो, ठीक है, दुनिया के अंदर ना जस्टिफाई करना होगा ना। तुम मदा तो सलूम ना यौम दिन अनिल, जरूर बिन जरूर उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा रजान जो है वन ऑफ दो शाइनी एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर बंदगी करी, ठीक है। तो इनका ये वाकया हमने पढ़ा था, इसके बाद फिर इनका एक अजीब वाकया जो कि किताब में अगरचे के हजरत जी ने नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको फिर भी सुना रहा हूँ, क्यों, इसलिए कि आप किसी और जगह इसको पढ़ेंगे, बल्कि हम तो सबको चाहते हैं कि आप सब मारुफुल कुरान तफसीर पढ़ें, बाकी चीजें छोड़ें मारुफुल कुरान तफसीर पढ़ें, ठीक है। तो जब मारुफुल कुरान तफसीर पढ़ेंगे और सूरह मुजादला पे पहुंचेंगे तो फिर यू विल एंड अप रीडिंग दिस वाकया, ठीक है ना। क्या वाकया है, तो सूरह मुजादला की आयत, मैं तो हाफिज नहीं हूं तो देख करके ही पढ़ना होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तजदु कौमन, कि तुम ऐसे लोग नहीं पाओगे, ढूंढोगे तो भी ना पाओगे, ठीक है ना, चिराग लेके ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो कि अल्लाह और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लेकर के आते हैं, युवा दूना मन हादल्लाह रसूलहू, कि वो उन लोगों से मोहब्बत करते हो जो कि अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते हो। तुमको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो कि अल्लाह और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाए लेकिन उनकी ये हालत हो कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्तियां करते हो। क्या मतलब, कौन बताएगा इसका मतलब, छोटे भाई ने लगते जगा के रखा वैसे क्या मतलब है शायद, कि तुमको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अल्लाह और उसके और कयामत के दिन पर ईमान लाते हो लेकिन वो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती रखते हो, क्या मतलब।
सही मोमिन का ऐसा नहीं पहले थे, वो अलायंस वगैरह कर दिया और उसको कंट्रीज कर दिया और उसको बेटे दो
यानी जो अल्लाह उसके उसके कयामत के ऊपर ईमान लाता है ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि वो काफिरों से दोस्ती रखता हो, ठीक है ना। अच्छा अल्लाह ताला ने यहां तक फरमाया और क्या कह, और आगे भी फरमाया वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम, अगर वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते हैं वो उनके अबूज क्यों ना हो, डैडीज क्यों ना हो, मुफ्ती साहब क्या ना वो कहते हैं डैडीज सही, वो तो वो उनके डैडीज क्यों ना हो या उनके सन्स क्यों ना हो, उनके अब्बूज क्यों ना हो या उनके बच्चे क्यों ना हो, ठीक है, वह इखवान हो वह अशीरत अव इखवान अव है कि वह इखवान हो, या उनके भाई क्यों ना हो, वो अशीरत हो, या उनके फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो, ठीक है। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है, यानी पक्का कर दिया है, डिसाइड कर दिया है, रासख कर दिया है इनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को। वह अय्यदहुम, आगे क्या,
अच्छा
वह अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, ठीक है, और उनकी जो है ना वो हाथों को मजबूत कर दिया है अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ईमान वाला जो है ना वो काफिरों से मोहब्बत और दोस्ती, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती है, दोस्ती भी और मोहब्बत भी दोनों एक ही चीज होती है। ये हो ही नहीं सकता कि ईमान भी हो और अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी करने वालों के साथ दोस्ती भी हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जो पक्के ईमान वाले होते हैं ना, वो तो ऐसे होते हैं कि इवन अगर अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी रखने वाले उनके अपने सगे क्यों ना हो, वो फिर भी उनसे मोहब्बत नहीं करते। ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, उनको जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है, मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत तो अल्लाह और अल्लाह के वास्ते से जिससे मोहब्बत की जाती है ना, बस उनसे मोहब्बत करनी, और किसी से मोहब्बत जायज ही नहीं है। वरना वरना इसका मतलब ये कुरान मजीद क्या कह रहा है, ईमान नहीं है भाई, इसका मतलब है, इसका मतलब है ईमान नहीं है, ठीक है। तो ये मोहब्बत की बात हो रही है, हमें मोहब्बत होती क्या है इसको समझने की जरूरत है, तब मसला आसान हो जाएगा। अभी तो हम परेशान हो जाते हैं ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं मोहब्बत क्या है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पता चल जाएगा तो फिर मसला आसान भी हो जाएगा। तो वाकया ये है हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा का कि जंगे बदर, ठीक है ना, इस्लाम का पहला मार्का कुफर के साथ, तो इसमें क्या हुआ था कि आगे से जो है वो कौन लोग आए थे लड़ने के लिए, रिश्तेदार, ठीक है, कुरैशी मुसलमानों के रिश्तेदार, और जो अंसारी मुसलमानों के उनके तो रिश्तेदार नहीं थे जो मक्का मुकरमा से आए थे, लेकिन जो कुरैशी मुसलमान थे उनके तो रिश्तेदार आए थे ना मक्का मुकरमा से, ठीक है। तो अब यहां पर बदर के मार्के में फादर अगेंस्ट सन, सन अगेंस्ट फादर, ब्रदर अगेंस्ट ब्रदर, ये था जंगे बदर, ठीक है ना, ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ठीक है, ये थी जंगे बदर, ठीक है। तो इसके अंदर लड़ाई हो रही थी, तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के साइड से थे ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि ये तो 8वें नंबर पर मुसलमान हो गए थे, और उस साइड पे जो थे वो इनके अब्बा थे, ठीक है। तो अब ये तो अपने अब्बा के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहते थे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इजाजत ही नहीं है, चाहे काफिर क्यों ना हो, वालदैन के साथ आप बेअदबी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये मैदान जंग के अंदर भी अवॉइड कर रहे थे, मैदान जंग में भी बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें, ठीक है ना, अगर वो आपके बड़े, तो ये वही कर रहे थे, ये अपने अब्बा का अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि दूसरे लोग लड़ने वाले हैं उनके साथ जाकर के, ठीक है। लेकिन अब्बा जो है ना उनके ऊपर कुफर सवार हुआ हुआ था, और अपनी जो थी वो तकब्बुर और कुफर की जो है ना वो बदमाशी सवार हुई हुई थी, तो अब्बा जो है ना वो इनको मुस्तकिल छोड़े जा रहे हैं, मुस्तकिल जो है ना उनके लगे जा रहे हैं इनके पीछे, ठीक है। तो इतना उसने फिर इनको तंग किया कि बिल आखिर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने अब्बा को, ठीक है, अब्बा को कत्ल कर दिया। सही, अल्लाह ताला को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इसके बाद ये वाली आयत नाजिल फरमाई, इसके बाद ये वाली आयत, इस आयत का शान नुज़ूल ये वाकया है, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अगेंस्ट हिज फादर, ठीक है ना। लेकिन सहाबे कराम की सुन्नत से हमें क्या पता चलता है कि ही डिड नॉट इनिशिएटेड, ठीक है ना, इन्होंने इसको शुरू नहीं किया था, ये तो अवॉइड करना चाहते, ठीक है ना। इसी तरीके से एक इससे कम दर्जे का वाकया अबू बकर सिद्दीक के साथ भी हुआ, वो क्या हुआ था कि इनके
नबी सल्लल्लाहु
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी थी, तो इन्होंने अब्बा को थप्पड़ लगा दिया था। किसने लगाया था भाई, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो नबी अलैहिस्सलाम ने इतना वो नहीं, खुशी का इजहार नहीं किया था कि हाँ बहुत अच्छा किया तुमने, जाए अब्बा को थप्पड़ मार के, नहीं, ठीक है, वो उनका अपना फेल था, और वो उन्होंने अपने हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से समझा इस बात को, लेकिन तो हमें भी इससे जो है ना बहुत अहम सबक हासिल करने की जरूरत है कि एक तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत जो है ना, इसके ऊपर किसी चीज से, किसी चीज को कॉम्प्रो, किसी चीज की वजह से इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम जो है ना वो गलत काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, बस मुझे कोई चीज बुरी लग रही है, मैं इससे अग्री नहीं करता, तो अब जो है ना मैं जाकर के उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दूं, क्योंकि वो जो है ना वो मेरे उससे अग्री नहीं करता, इस पर मैं बात किया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ों के साथ अदब और तमीज के साथ हमने फिर भी रहता है। ठीक है, और जब खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, ठीक है ना, खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर ऐसा आजमाइश आ जाए, तो भाई अल्लाह ताला से तो वैसे दुआ मांगनी है, अल्लाह हम इस आजमाइश के काबिल नहीं है, आप हमें बचाइए, हम नहीं इस आजमाइश के काबिल। ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता आ जाए तो फिर प्रेफर जो है वो अल्लाह और उसके रसूल को कर, ठीक है, और किसी को भी नहीं करता, चाहे कोई भी हो। अच्छा, तो इनका ये वाकया जो है जंगे बदर का वाकया था, फिर उसके बाद आपको पता है कि एक ही साल के बाद जंगे उहद भी हुई थी। ठीक है, तो जंगे उहद के अंदर फिर जो मुसलमानों से गलती हो गई थी कि जबल रुमात के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को पोस्ट किया था 50, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बस नीचे जो मैदान जंग में लड़ाई हो रही थी, तो उसमें तो मुसलमानों ने काफिलों को भगा ही दिया था, फौरन ही लड़ाई वड़ाई करके काफिल तो भागना शुरू हो गए थे, तो उस वक्त जो 50 आर्चर्स तीरंदाज जो वहां पे थे ना, तो उनमें से सारों ने तकरीबन दो तो चार को छोड़ करके सबने कहा कि बस अब तो लड़ाई खत्म हो गई, हम नीचे चलते हैं। अमीर साहब को नबी अलैहिस्सलाम ने मुतय्यन किया था वहां, किसको मुतय्यन किया था, एक लीडर को मुतय्यन किया, ठीक है ना, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे, और नबी अलैहिस्सलाम नसीहत भी करके गए थे, चाहे कुछ भी हो जाए ना तुम लोगों ने नहीं उतरना यहाँ से। ठीक है, तो अब जब ये लड़ाई बजाय खत्म होती हुई नजर आई, तो इन लोगों ने कहा कि भाई अब क्या जरूरत है हमें यहाँ पे रहने की, हमें उधर जाना चाहिए। अमीर साहब ने कहा नहीं, नबी अलैहिस्सलाम जो कह के गए हैं ना, मैं तो उससे नहीं डर सकता। ठीक है, तो वो लोग, उन्होंने बात नहीं मानी अमीर की, और अमीर की नाफरमानी, नबी अलैहिस्सलाम के उन्होंने डायरेक्टली नाफरमानी नहीं करी थी, आपसे तो पूछे तो थोड़ी आए थे कि भाई आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, तो नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी नहीं करी थी उन्होंने, उन्होंने तो अपने अमीर की नाफरमानी करी थी ना, बल्कि किस चीज की नाफरमानी करी थी, अमीर के इज्तिहाद की नाफरमानी करी थी। ठीक है ना, कि भाई उस मौके पर अमीर साहब ने ये जज किया कि नहीं, अभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि हम यहां से उतर जाएं। तो अमीर जो होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग अभी इस तरह गए थे ना माशाल्लाह पिछले फ्राइडे को, ठीक है ना, तो वहां पे अब्दुलरहमान भाई ने बहुत सारी कमिटीज बनाई थी। ठीक है, हर कमेटी के एक अमीर साहब थे, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस तो जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने अमीर साहब को दे दी थी, लेकिन हर इंस्ट्रक्शन तो चीफ ऑर्गेनाइजर साहब अमीर साहब को नहीं दे सकते ना, कि 2 घंटे के बाद जब ये इवेंट होगा इस तरह में तो तुम्हें ये करना है, फिर 3 घंटे के बाद जब ये होगा तो तुम्हें ये करना है, भाई अमीर वो चीफ ऑर्गेनाइजर साहब को ये सारी बातें तो नहीं पता। तो अब क्या होगा कि जिसको अमीर बना दिया है, ही विल हैव टू टेक डिसीजंस, ही विल हैव टू टेक हिज ओन डिसीजंस ना, जब कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी तो। ठीक है, अब बाकी लोग जो हैं, जो इनके कमेटी के मेंबर्स हैं, अगर वो कहेंगे नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हमारा तो ख्याल है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए, तो भाई इससे क्या होगा, इससे जो है वो इनडिसिप्लिन होगा। ठीक है, इससे काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भाई उस वक्त जो है आप क्या कर सकते हैं, किस चीज की इजाजत है, किस चीज की इजाजत है, अमीर को मशवरा देने की इजाजत है, अमीर को मशवरा देने की इजाजत है। ठीक है ना, लेकिन मशवरा भी तमीज से होना चाहिए, मशवरे का दूसरा अंदाज क्या होता है, सर पे सवार हो जाना, लोग कहते हैं मैं तो बस मशवरा दे रहा हूं, लेकिन असल में वो सर पे सवार हुए भी होते हैं। ठीक है ना, ये मशवरा नहीं होता, सर पे सवार होना है समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो अमीर को मशवरा दिया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो डिसीजन है वो किसने लेना है, अमीर ने लेना है। और अब जब उसने डिसीजन ले लिया ना, तो पीछे जितने लोग उसकी कमेटी के अंदर हैं उनको अमीर के डिसीजन को फॉलो करना होगा, ये अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। कैसे भाई, वउलिल अम्र मिनकुम, ये अल्लाह का हुक्म है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूली वउलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारे दरमियान जिसको अमीर बनाया गया है, तुम्हारे दरमियान जो साहिब अथॉरिटी है उसके हुक्म को मानो, तो हर अमीर के हुक्म को मानना ये अल्लाह का हुक्म है, और जो अल्लाह का हुक्म तोड़ता है उसके ऊपर टॉफियां मिलती हैं खाने को, नहीं उसके ऊपर पेट्रोल मिलती है खाने को। सही है। तो इन्होंने फिर उहद में क्या हुआ कि मुसलमानों से गलती हो गई। भाई गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, तो मुसलमान फरिश्ते भी थोड़ी होते हैं कि गलती नहीं हो सकती। गलती हो गई उनसे, लेकिन फिर गलती के बाद लड़ाई भी शुरू हो गई जाहिर है। फिर तो भाई बहुत बड़ा केओस क्रिएट हो गया था। केओस तो फिर आपको पता है कि उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को भी जो है ना वो रिट्रीट करना पड़ा था, वो ओहद के पहाड़ के की तरफ। ठीक है। तो वहां पे काफिरों ने बहुत उनके ऊपर हमला, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे उनके पास जमा होना शुरू हो गए। तो अबू उबैदा रहता जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ना, तो उस वक्त तक काफिर जो थे वो नबी अलैहिस्सलाम को मार चुके थे ऑलरेडी। ठीक है। तो आपसे सलम जो है ना वो बाकायदा आर्मर पहने हुए, और कितने आर्मर पहने थे आपसे सलम ने उहद में? दो आर्मर पहने, यानी डबल आर्मर पहना होता आपसे सलम, एक उसके ऊपर दूसरा। ठीक है। और आर्मर का हिस्सा आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक हेलमेट भी होता था। ठीक है। उस हेलमेट के ना यहाँ पर फिर जंजीरें लटक रही होती थी। कभी अगर आपने देखा हो इस तरह की तस्वीरें देखी हो, हम बचपन में थे तो वो आखिरी टटान उसके अंदर पहने हुए होते थे ना इस तरह के, तो वो जंजीरें लटक रही होती थी। तो जंजीरों के जो है ना छोटे छोटे वो होते हैं, खोद कहते हैं उनको, या उनको अच्छा भी कहते हैं। तो वो जो जंजीरों के ये होते हैं ना, तो अब इसका मकसद क्या होता है कि जब तलवार आके ऐसे लगे ना, तो बजाय इसके कि आपका सर कट जाए, ये जो लोहे की जंजीरें लटक रही हैं ये जंजीरें तलवार के वार को रोक रहे। अनलेस के तलवार किसी ने बहुत जोर से मारी हो ना, तो फिर तो खौद भी कट जाता। ठीक है। लेकिन हल्के फुल्के उससे जो है ना वो कटता नहीं था। तो आपसे को जो ऐसे आके लगी ना वो चीज, या तलवार था या नेजा था या तीर था, जो भी चीज थी, तो उससे क्या हुआ कि ये जो कड़ियां थी ना उसकी जंजीर की, तो दो कड़ियां जो है नबी अलैहिस्सलाम के घुस गई ना, मुंह के अंदर घुस गई। ठीक है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के मुंह में घुस गए। ठीक है। तो अबू उबैदा जब वहां पहुंचे ना, उन्होंने देखा कि ये तो घुस गई है और नबी अलैहिस्सलाम को शदीद तकलीफ हो रही है उसकी वजह से। ठीक है। आप रजी अल्लाह तआला ने क्या किया कि उनको निकालने की कोशिश करी। ठीक है। अगर अंदर रहेंगी तो और ब्लीडिंग होगी और इन्फेक्शन बढ़ेगा, निकालने की कोशिश नहीं, निकल नहीं रही थी। तो इन्होंने मैं ना इसको, जैसे आप कहते हैं ना कोई चीज नहीं निकलती तो दांतों से पकड़ के हम निकालते हैं ना, तो इन्होंने दांतों में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है जबड़ों में इंसान के। ठीक है। जब ये सब ना कि मेरी और मेरे खुलफाए राशिद की सुन्नत को तुम जबड़ों से पकड़ करके रखो, जबड़ों से, क्योंकि जबड़ों के अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है जॉज में। ठीक है। तो इन्होंने अपने जॉज से जो है ना जो पकड़ करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करी ना, ऐसे करके पकड़ के यूं करके बाहर निकालने, तो इतना सख्ती से वो अंदर घुस गया था कि इनका दांत ही टूट गया। ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे दांत से जो है ऐसे पकड़ करके फिर निकालने को, यानी वो तो निकल गई लेकिन इनका दांत टूट गया। फिर दूसरे दांत से पकड़ करके ऐसे खींचा तो दूसरा भी निकल गया लेकिन दूसरा दांत भी टूट गया। ठीक है। तो सहाबा किराम फरमाया करते थे कि अबू उबैदा जो है ना ये दोनों दांत तोड़वाने के बाद जितने खूबसूरत लगते थे ना उतने से पहले नहीं लगते थे। ठीक है। तो दांत टूट जाए तो इंसान की अजीब सी शक्ल हो जाती है, जैसे कि आपके गोल गोल ऐसे नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। आजकल तो वो सर्जरी करेंगे हारून भाई के अब्बू, ऊपर पता नहीं क्या कर देंगे, ठीक ठाक कर देंगे हारून रेहान भाई के अब्बू, वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इसको कहते हैं उनके अब्बा के। तो ऐसे उन्होंने उहद के मैदान के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। अच्छा, इसके बाद बैते रिजवान का वाकया हुआ 6 हिजरी के अंदर। तो उसमें आपको याद होगा कि बकायदा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसके ऊपर के नबी अलैहिस्सलाम ने सिग्नेचर्स भी किए थे। ठीक है। खुद आपसे सलम ने लिख दिया था ना अपना नाम, हालांकि आपसे सलम को लिखना नहीं आता था, तो एक मोहर जाहिर हुआ था कि आपसे सलम लिख दिया था। फिर उसके ऊपर बकायदा विटनेसेस के जो है वो स्टैम्प्स वगैरह लगाए गए थे। तो अबू उबैदा बिन जर्रा रहता ना वॉज वन ऑफ द विटनेसेस इन बैत रिजवान, सॉरी सुलह हुदैबिया। ठीक है। अच्छा, सुलह हुदैबिया का वाकया हो गया, उसमें इनका ये रोल था। फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक और वाकया हुआ था, हमने सीरत के अंदर पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला जो कि 6 हिजरी में ही मुसलमान हो गए। किसके साथ मुसलमान हुए थे? एक और भी थे उनके साथ जी, आप ज्यादा और उसको याद होगा। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला जो है वो, और अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला और उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला, ये तीनों आकर के ना फिर 6 हिजरी में मुसलमान हुए थे। लेकिन ये तीनों जो थे ऐसे जर्नैल किस्म के लोग थे, बल्कि कम से कम दो तो खालिद बिन और अमर बिन आस रजी, ऐसे 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 यानी स्ट्रेटेजिक प्लानर और ऐसे जबरदस्त किस्म के फाइटर थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन ही इनको जो है ना वो जंग का अमीर बना करके रवाना कर दिया। तो अमर बिन आस जो है वो बहुत सारे सहाबा को लेकर के जातो सनासिर के मुकाम के ऊपर पहुंचे। तो अगर आप लोगों को याद हो कि वहां पर क्या हुआ,
आग नहीं
एक
जलती, आग नहीं
तो
जलती।
आग नहीं जलाने दी थी, ठीक है, और भी लश्कर का पीछा भी नहीं करने दिया था, ठीक है, काफिरों का लश्कर था, रात के वक्त जो है वो सर्दी हो रही थी, इन्होंने जो है वो आग भी नहीं जलाने दी। फिर वो जब भागने लगे थे काफिर, तो इन्होंने उनका पीछा भी नहीं करने दिया, और नमाज की इमामत के इनका जो है वो उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हुआ हुआ था, और लोगों ने कहा कि भाई आप तो इस वक्त माजून है आपके ऊपर, तो उन्होंने नहीं, मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दूंगा, फिक्र ना करो, ठीक है। अच्छा, इससे भी बढ़ करके एक और भी वाकया हुआ था उसमें, एक और अजीब इंसिडेंट हुआ था। वो क्या कि जब ये वहां पहुंचे थे ना, तो दुश्मन का पता चला था कि बहुत बड़ी तादाद में दुश्मन है, तो इन्होंने फौरन जो है ना नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा था कि भाई वी नीड हेल्प, हमें कुमक की जरूरत है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हेल्प भेजी थी। हेल्प में कौन भेजे थे? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था, और उनके नीचे कौन लोग थे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, और जो सीनियर मोस्ट सहाबा थे ना वो सारे के सारे अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला की अमारत में भेजे थे, ठीक है ना। और नबी अलैहिस्सलाम ने इतना फरमा दिया था कि वहां पर ना वो कुछ समथिंग लाइक दैट के अमीर की अताअत करना या कुछ इस तरह से ना, ठीक है। बहरहाल जब ये वहां पर आ गए ना, तो अब वहां पर कौन थे? अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला जो है वो अमीर थे, ठीक है। तो अब अंडरस्टूड सी बात होती है ना कि इतने सीनियर सहाबा आ गए हैं, और अबू उबैदा बिन जर्रा रहता जैसे अशरा मुबशरा, और जो है वो, और ये तो अभी अभी मुसलमान हुए, ये तो बिल्कुल ही जूनियर साहबी हैं, ठीक है ना। तो भाई ऑटोमेटिकली इनको ये करना चाहिए था कि अबू उबैदा बिन जर्रा रहता उनको अमीर बना देते और खुद उनके नीचे आ जाते। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अल्लाह के नबी ने अमीर बनाया है, मैं ही अमीर रहूंगा, ठीक है ना। तो अबू उबैदा बिन जर्रा रहता इतने बड़े होने के बाद, इतने शान और शौकत वाले सहाबी होने के बावजूद, उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, मैं तुम्हारी अदालत के अंदर ही आम साहब सिपाही की तरह से लड़ूंगा, ठीक है। तो ये इनकी बहुत बड़ी अजमत थी कि इतने बड़े होने के बावजूद, इतने नोन किस्म के वॉरियर होने के बावजूद, अमर बिन आस की जो है उन्होंने अदालत कबूल कर ली कि मुसलमानों के दरमियान कोई तफरका ना पड़े, कोई जो है वो कयास वगैरह की सिचुएशन ना पैदा हो जाए, ठीक है। अच्छा, और इनका एक बहुत बड़ा काम कारनामा, शायद हम क्लास में कुछ दिन पहले ही, बल्कि हाँ सुभान अल्लाह, इसी घर में बैठे थे, और इस घर में उस वक्त के मकीन जो थे वो नहीं थे जो अब है, बल्कि ये थे अफान भाई और फरहान भाई, वो इस घर में रहते थे, ठीक है। क्या वाकया था जो आपके घर में बैठ करके हमने आप लोगों को पढ़ाया था? मुझे याद है इधर ही बैठ करके इसी कौन सा बात कर। अच्छा हाँ, नहीं ये नहीं थे, यहाँ यहाँ किधर यहाँ का करता ये, सॉरी ये तो नीचे ही रहते थे। हाँ यहाँ का कर, क्या पढ़ाया था? वो वाकया था जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम की अभी तदफीन भी नहीं हुई थी कि सकीफा बनू साद, यहाँ पे अभी भी एक छोटा सा बाग है ना मस्जिद नबी से आप बाहर निकले ओहद की डायरेक्शन में, तो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर वो बाग अभी भी मौजूद है, वो सकीफा बनू साद यानी हजरत साद बिन अबू उबादा रजुल तारा का वो बाग था, ठीक है। तो वहां पर जो है वो अंसारी सहाबा जमा हो गए थे, और वो बात करना शुरू हो गए थे कि भाई अमारत सबसे अहम चीज होती है, वरना जाहिर है फिर शैतान आकर के अमीर बन जाएगा। अगर हम लोगों ने अपना किसी मुसलमान बंदे को, अच्छे नेक बंदे को अमीर नहीं बनाया तो क्या होगा? जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख कौन होता है? शैतान होता है। और जिसका कोई अमीर नहीं होता उसका अमीर कौन होता है? शैतान होता है। और जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद कौन होता है? अभी किसे पूछूंगा जिनको अभी रिसेंटली बताया था, जिनका कोई उस्ताद नहीं होता उसका कौन उस्ताद होता है? शैतान होता है, ठीक है ना। शैतान इज देयर टू फिल इन इमीडिएटली, शैतान देर नहीं लगाता, वो फौरन उस जगह को पुर करता है, ठीक है। तो सहाबा को ये बात समझ में आ गई, नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में दे हैड रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इंटरनलाइज द कॉन्सेप्ट, दे न्यू वेरी वेल शैतान किस बला का नाम है, ठीक है ना, और इससे बचने के लिए हमने क्या करना है। सिर्फ औज़ बिल्ला नहीं पढ़ना, हमें ये सारे काम भी करने हैं, ठीक है। तो फौरन सहाबा जो है वो जमा हो गए, और अमीर कौन बनेगा, अमीर, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तक ये खबर पहुंची कि भाई ये तो डिस्कशन अमानत की हो रही है, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जो है वो फौरन निकले वहां से, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु इन दोनों को लेकर के वहां पर पहुंचे, ठीक है। और वहां पर पहुंच करके अंसार को जो है ये हदीस भी सुना दी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अमारत जो है ना ये तो कुरैश के लिए ही, अमारत जो है वो कुरैश के लिए ही, ठीक है जी।
परसों आपने इन लोगों को
जी
शायद इसकी वजह यह हो सकती है।
हाँ, जो सोहबती तरबियत याफ्ता होता है ना, तो उनकी तो जाहिर है उनका इल्म और उनकी समझ, उनका अमल, उनका यकीन ये बाकी लोगों से ज्यादा होता है हमेशा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो कुरैश के लिए अमानत रखी तो कुरैश को पहले पिटाई भी खूब करवाई थी, ठीक है। ये जो मदीना मुनव्वरा के अंदर सहाबत है, इन्होंने तो उन्होंने हबशा की हिजरत नहीं करी थी, हबशा की हिजरत तो इंतहाई सख्त तरीन हालात की वजह से करनी पड़ी थी ना। अंसार नेवर वेंट थ्रू दैट, बट द कुरैश डिड। तो पिटाई खा खा करके उनका तज़किया ऐसा हुआ था जो कि अंसार का वैसा तज़किया नहीं हुआ था, हुआ था उनका भी लेकिन वैसा तो नहीं हुआ था। तो ऐसे ही नहीं, खाम खामी नहीं कुरैश के लिए अमारत है, यहाँ भी इनको मंटड्डू खिलाए जाएंगे क्योंकि ये कुरैश है, ऐसे एंड होता, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया था, तो फिर अब जो है वो ठीक है भाई, अब कुरैश में से अमीर कौन बनेगा। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने पहली बात कि भाई देखो ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु है, तुम्हें पता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने उमर के जरिए से दीन को मजबूत फरमाया, ठीक है ना, तुम इनको भी अमीर बना लो। या ये अबू उबैदा है, तुम्हें पता है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था कि ये इस उम्मत के अमीन है, अमीन हाज़िहिल उम्मा, इनको तुम अपना अमीर बना लो भाई, इस उम्मत के अमीन तो ये है, ठीक है। तो उस मौके के ऊपर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ने खड़े होकर के अंसार से खिताब किया, या माशर अल अंसार, ए अंसारी, ए अंसारियों की जमात, ठीक है, और फरमाया कि इन्नकुम कुंतुम अव्वला मन नसर, कि बेशक तुम लोग जो हो ना, तुम तो सबसे पहले थे जिन्होंने मदद करी, यानी इस दीन की मदद करी। दीन की मदद करने का मतलब क्या होता है?
जी
दीन वालों की मदद करना, ठीक है, दीन वालों की मदद करना, यानी नबी अलैहिस्सलाम की तुमने मदद करी, ठीक है ना। तुम तो सबसे पहले हो कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मदद करी, ठीक है ना। तो अब तुम फला तकूनु अव्वला मन गैरा, फला तकूनु, अब तुम ऐसे ना हो जाना कि जो कि सबसे पहले इस दीन को खराब करने वाले बन जाओ, ठीक है, कि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से और डिस्कॉर्ड की वजह से और डिसएग्रीमेंट्स की वजह से, फिर तो शैतान को मौका मिल जाएगा, वो तो आकर के फौरन दीन को खराब करना शुरू कर देगा। तो तुम उसकी वजह मत बन जाना, तुम तो मदद करने के लिए वजह बने थे ना, ठीक है। तो उस वक्त फिर उन्होंने दोनों हजरात ने, बल्कि उमर रज़ियल्लाहु और अबू रज़ियल्लाहु ने, दोनों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के हाथ पे बैत कर दी, ठीक है ना। अब जैसे ही उन्होंने बैत करी, माशाल्लाह बाकी जो सहाबा थे वो तो टूट पड़े ना बैत करने के लिए, ठीक है। बस एक होता है, किसी को पहल करनी होती है, ठीक है। तो अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो किसी को पहल करता देख करके वो भी आगे बढ़ जाते हैं, और जो बुरे होते हैं तो वो नहीं बढ़ते। लेकिन ये तो सहाबा थे, ये तो सारे के सारे अच्छे लोग थे, बस पहल करने की जरूरत थी, इन्होंने पहल कर दी, ठीक है ना, ये आगे बढ़ गए सारे के सारे, ठीक है। ये एक बहुत अहम वाकया इनकी जिंदगी का हुआ। फिर इसके बाद इनकी जिंदगी के बहुत सारे तो खैर नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, चंद और वाकयात हैं जिनका ताल्लुक जो है वो शाम की फतह के साथ, ठीक है। और वो इतना अच्छा किसी ने लिखा है कि मेरा तो यही दिल चाहता है कि मैं बस पढ़ करके ना आपको सुनाऊं, लेकिन जो कि आज का जो है वो टाइम खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह जी क्लास के अंदर ठीक है, वो वैदान से मुतालिक और उनके अराउंड होने वाले कुछ और वाकयात जो कि शाम की बताते से मुतालिक, तो इंशाल्लाह जी क्लास मुझे कोई सवाल हो या कोई कॉमेंट हो किसी भी रिलेटेड टॉपिक। हाँ अगले हफ्ते जो है ना वो बकरे खा खा करके हमारी ये हालत हो चुकी होगी इंशाल्लाह, एक क्लास नहीं होगी ठीक है। तो और क्या वजह क्लास में होने की, बकरे खाने के, और क्या बकरे ही हो चुकी होगी जी। कुछ लोग दवा भी दवा कर करके भी थक जाते हैं, सफाई भी कर करके थक जाते हैं, आपके घर में तो भगवान भाई के घर में तो सफाई भी कर करके थक जाते हैं ठीक है। तो अगले हफ्ते फिर हमारी क्लास नहीं होगी, लेकिन उसके अगले वाले हफ्ते फिर इंशाल्लाह हम बाकी वाकयात पढ़ेंगे और देखेंगे अगर इसको मुकम्मल पढ़ जाते हैं। इंतजार करूंगा, खैर अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है।